न्याय के बारे में। चलिए ना, टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं। 416-620-1778 हमारा नंबर है।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-0241-647-769-0241।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यूब थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब 519-622-0660। quicktrucklube.com।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटारियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु घटाउण लई नवीआं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। एही सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो। इस दी अदायगी ओंटारियो सरकार वल्लों कीती गई है।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा 647-290-3773।
अपनी कम्युनिटी का सब तो बड़ा, बढ़िया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता सोडी फर्नीचर तो। 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन। 9058747-4711।
पाकिस्तान पैसे भेजना अब हुआ आसान। यूज लिम्फाई फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। कनाडा से पाकिस्तान पैसे मिनटों में पहुंचते हैं बराह रास्त, जिसको आप भेजना चाहें। बेहतरीन एक्सचेंज रेट और पैसे पहुंचे मिनटों में। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर। कोड पाकिस्तान इस्तेमाल करने पे आपको मिले $10 का कैश बैक। अपने फोन से बराह रास्त बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू करें मिनटों में और बिना किसी फीस के। लिम्फाई
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
چاندنی
بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye 437-218-8734. ChandniHalls.ca. Chandni.
Radio Star.
تمام ویلکم بیک تمام سامعین کے جو 770 ایم ڈائل پر سن رہے ہیں پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں گرما گرم کھٹی میٹھی خبریں لے کے شازیہ ملک صاحبہ. جناب بالکل شازیہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. آپ بولیں گے عامر بھائی آپ اتنے سیریس کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی صرف ایک ہی کام سیریسلی کرتا ہے اور سنتا ہے دیکھتا ہے, وہ ہے خبریں. تو اب خبروں کا وقت ہوا جاتا ہے. میں بھی سیریس ہو گیا ہوں, آپ لوگ بھی سیریس ہو جائیں, کیونکہ باقی زندگی میں ہم کسی بھی کام کو سیریس نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کا اس سے ایگری ہونا ضروری نہیں بنتا. چلے جناب کھٹی میٹھی خبریں اور مزیدار چیلی ملی والی خبریں لے کے وتھ ساؤنڈ افیکٹ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہیں؟ نہیں میں بالکل سیریس, آئی ایم گڈ.
کمیز کو لال پہنی ہے, قربان ہونے کو تیار ہو تم.
دس از ناٹ لال, دس از ناٹ لال.
واٹ از دس؟
آپ سامعین اور ناظرین, سامعین آپ تو نہیں دیکھ سکتے, ناظرین آپ ان کی آنکھوں کا علاج کروائیے اور ان کو بتائیے کہ ریڈ ٹی شرٹ نہیں ہے,
شرٹ.
ٹھیک ہو گیا, سیریس ہو گیا نا. خبریں پی ٹی وی کی خبریں شروع ہیں. آج کی تازہ ترین خبریں, صدر ضیاء الحق صاحب نے جو ہے کابینہ
کا یورپ پھٹ گیا.
خبریں بھی سنا ہے آپ نا, پھٹ گیا, مر گیا. یار آپ کے خبریں ایسے,
یار کیوں اس کا طیارہ پھٹا نہیں تھا؟ مطلب یہ خبر میں سنا رہی ہوں تمہیں, تم اس کے اوپر بھی تم حاضر ہو, دانت نکال رہے ہو. مطلب بڑے افسوس,
مطلب آپ نے بھی خبر ان کی اینڈ کی سنانی تھی, اینڈ کی سنانی تھی خبر ہے کہ بندہ جو ہے وہ اینڈ پر پہنچ گیا, تو آپ کو لگا کہ جی خبریں سنا دوں. ہیں اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں کرنا تھا. کئی چیزیں تھی نا ان کی بھی, ایسا تو نہیں تھا کہ آپ جو ہیں وہ زندگی ان کی دھماکے سے شروع ہوئی اور ختم ہو گئی.
اچھا چلو ٹھیک ہے, اب عامر تم نے بہت باتیں کر رہی ہیں اور تم میرا بلا وجہ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. مجھے تمہارے سارے ٹیکٹکس سب سمجھ آ رہے ہیں, مجھے خربیں کرنے تو لوگ انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال, اور یہاں پہ بڑے زبردست قسم کے کھانے ملتے ہیں جی. ساڑھا تو انٹرسٹ کھانا ہی ہے جی. تو یہاں پہ آپ 1400 لوگوں کو بلا سکتے ہیں, 32 روم لگژری ہوٹل ہے. تو آپ ان کو کال کر لیں اگر آپ نے اپنے کوئی بھی ایونٹس کرانے ہیں. ان کا نمبر ہے 6479653823. یہ جو ہے ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے اینڈرائڈ یا ایپل فونز کے اوپر, اور اپنے بالکل آرام سے پیس آف مائنڈ سے آپ پیسے بھیجیں. $250 پہ آپ کو $30 کا کیش بیک ملے گا, زیرو ٹرانسفر فی ہے. لیمفائی فار انٹرنیشنل ٹرانسفرز. اور جی جو راجا بادشاہ جی ہیں انہوں نے بڑی ڈنڈی ماری ہے, ہم کو $400, زیشان کو $100 اور عامر کو 1775 چھوڑے ہیں کھا لی انہوں نے. ہے جی بارہ جی, آپ بھی 770 کا نام لے کے جائیں, آپ کو بھی شاید بہت سارے وہ پیسے چھوڑ دیں گے. تو راجا بادشاہ جی کے پاس جائیں, آل اسٹیٹ ایجنسی میں ہیں لیکن آپ پکرنگ شفٹ ہو گئے ہیں. ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کو سروسز نہیں دیں گے, بالکل سروسز دیں گے پورے جی ٹی اے کے اندر. تو آپ ان کو کال کریں 6472903773. اینڈ جناب ڈاکٹر فیاض قریشی, زبردست قسم کی ان کی جو ڈینٹسٹری کی سروسز ہیں, بڑے قابل ڈاکٹر ہیں. وی مسٹ سے کہ بہت ہی, ایک تو اچھے بھی ہیں اور بڑے قابل ڈاکٹر بھی ہیں. تو ان کے تین کلینکس ہیں, دو مسز آگا میں, ایک اسکارڈرو میں. تو آپ ان کو کال کر لیں ان کو بھی جی, مسز آگا میں 9052325678 اور اسکارڈرو میں 4167579999, آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے جناب ہم اپنی شروع کرتے ہیں جی اب خبریں. اچھا کل میں نے آپ کو بتایا تھا, جب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دو بائی الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس میں پی اے پالیور صاحب جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک این ڈی پی کی رائڈنگ ہے اور ایک لبرل رائڈنگ ہے اس میں سے لے لیں. اور اس کے اندر انہوں نے بڑے جذبات میں آگے کہا کہ یہ جو سیل آؤٹ سنگھ ہے, جگمیت سنگھ کو کہا کہ جی یہ جو ہے یہ اب اس کا جو ہے, ہم کہتے ہیں اس کو کہ ہمارے ساتھ آئے, اب جو نو کانفیڈنس موو لا رہے ہیں اس کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھے, اور مطلب ایک وہ ٹیمپو بلڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ جی یہ ان کو بڑا درد ہے کینیڈینز کا اور ان کو جو ہے یہ ونز ملیں ان کے اندر, ہو سکتا ہے کچھ مطلب ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی انہوں نے جب بات کی ہے نا, اب اس پہ دنیا بھڑک گئی ہے. کنزرویٹو اور لبرلز جو ہیں اب دونوں اس چیز کے اوپر جو ہے فائٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پالی ایف صاحب نے یہ جو بڑا ہی ریڈیکولس ورڈ یوز کیا جگمیت سنگھ کے لیے, یہ بڑا ریسسٹ ہے. اور ایمرجنسی پریپیئرڈنیس منسٹر ہرجیت سنگھ صاحب نے کہا ہے کہ پی ایف پالی ایف صاحب نے جو جگمیت کو سیل آؤٹ سنگھ کہا ہے, یہ ایبسولوٹلی اوفینسو ہے فار سکھ کمیونٹی, کیونکہ یہ شو کرتا ہے ان ایکوالٹی, اور جو ہے یہ ایسے کمیونٹی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کنزرویٹو نے یہ ایلیگیشنز بالکل ریجیکٹ کیے ہیں, لیکن یہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس سے پارلیمنٹ کے اندر کافی ٹینشن آئے گی. زیادہ تر لوگ آپ کو پتا ہے یہ جو سکھ دھرم سے ہیں وہ سکھ جو ہوتے ہیں وہ اپنا سنگھ ضرور یوز کرتے ہیں, جیسے کہ जगमीत सिंह जो है और आखिरी नाम अपना ना भी यूज करते हुए सिंह यूज करते हैं फॉलो करते हुए अपने फेथ को, क्योंकि ये जो है ये सिंबल ऑफ इक्वालिटी है इनके फेथ के अंदर। तो वो कहते हैं जी कि अपना बर्थ नेम ना भी यूज करें, ये जरूर यूज करते हैं। तो इट्स अ वेरी रेसिस्ट टर्म जो इन्होंने यूज की, सेल आउट सिंह, उसकी वजह से लोग भड़क गए हैं और वो बड़े हेटफुल वे में अब सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी फैलाया जा रहा है। सज्जन साहब ने कहा पॉलियर साहब जो है उनको तो वो जो है गवर्नमेंट का हिस्सा, तो उनको तो ये चीजें ज्यादा अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, लेकिन वो एक हेट जो है जो ऑलरेडी राइज पे है उसको और हवा दे रहे हैं। सेबास्टियन स्कैम्स की जो है पीएफ पॉली एप के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा जी ये चार्जेस बेसलेस हैं, रिडिक्यूलस हैं और ये तो एक बड़ा ही डिसऑनेस्ट मिनिस्टर है जो कि एनडीपी और लिबरल पार्टी का जो कार्बन टैक्स हाइक्स हैं उनसे लोगों के नजर हटाने चाहता है और हाउसिंग कॉस्ट जो इतने ऊपर चले गए हैं उनसे नजर हटाना चाहता है, तो इसलिए ये इस तरह के बातें कर रहा है। तो ये जनाब चीजें जो हैं जरा खराब हुई हैं यहां पे। फॉर्मर बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है स्टीफन पोलोज, उन्होंने कहा जी कि जिस डायरेक्शन में बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिम मैकलेम इसको लेकर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता जो है उसके ऊपर वो चल रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है अंडर कंट्रोल है, इन्फ्लेशन इज डाउन 2.5%। तो इसलिए जो रिस्क था जो कि हमें लग रहा था कि अक्यूमुलेट कर रहा है वो अब नीचे की तरफ जा रहा है। इन्फ्लेशन आपको पता ही है कि स्टैट्स कनाडा ने कहा था जुलाई के महीने में 2.5% पे है, विच इज द लोएस्ट सिंस मार्च 2021। और जो करंट बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर हैं टिफ मैकलम, उन्होंने कहा है कि जी हमको जो है इसके ऊपर नजर रखनी है और यही चीज जो है इन्होंने भी पोलोस साहब ने कहा कि उन्होंने बड़ी अच्छी इस पर नजर रखी हुई है और वो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो कैसे कर रही है। इन्फ्लेशन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है लेकिन हमारा टारगेट जो है वो तो 2% है, तो जो कि ये शो करता है कि हम राइट पैथ पे हैं। पोलोस साहब ने कहा जी कि ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, यानी कि कनाडा अमेरिका दोनों के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हौले हौले नीचे आ रही है और लेकिन हमको अपने सारे कार्ड्स टेबल पे रखने पड़ेंगे। अगर ये कहा जाए कि रिसेशन नहीं आ सकता, रिसेशन आ सकता है, हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही रद्द कर दें। नहीं भाईजान ऑलरेडी है भी, अब आपको नहीं नजर आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, जो प्रीमियर्स हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं ट्रूडो साहब से। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं न्यू ब्रंसविक के जो प्रीमियर हैं ब्लेन हिग्स, उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा है कि जी प्रोविंशियल जो ऑफिसर्स हैं उनको इन्वाइट किया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो यहां पे न्यू ब्रंसविक में 4,600 असाइलम सीकर्स को भेजना चाहते हैं लेकिन हमें तो कोई फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो तो हमें दी जा नहीं रही है। तो वो कहते हैं जी ये जो डॉक्यूमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओपन असाइलम क्लेम्स इन ह्यूमैनिटेरियन वॉल्यूम, उसमें उन्होंने ब्रेक डाउन डाला है प्रोविंसेस का कि कौन सा प्रोविंस कितना एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम इनको लेना नहीं चाहते, लेकिन कोई प्लान होना चाहिए, कोई इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोविंस का इस वक्त यानी कि न्यू ब्रंसविक जो है उसका जो हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम है वो हैंडल नहीं कर सकता है इस इन्फ्लक्स को। फेडरल इमिग्रेशन या रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप मिनिस्टर मार्क मिलर साहब जो है वो कहते हैं जी हिग्स का ये जो कमेंट है इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल है और हमने बिल्कुल फोर्स नहीं किया न्यू ब्रंसविक को कि 4,600 असाइलम्स को आप लो, और हमने ये भी नहीं कहा कि हम फाइनेंशियल हेल्प नहीं देंगे, अगर आप ये एब्जॉर्ब करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल हेल्प देगी। हिग्स ने कहा जी कि कोई हमारे पास कॉन्फर्मेशन नहीं है कि कोई हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी और कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि ये सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा। वैसे ही 3 साल के अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं यहां पे आ चुके हैं और हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि एक मैप बनाएं, एक प्लान बनाएं जिसके तहत ये करें। अच्छा, जब इन्होंने ये अब कहा तो क्यूबेक में भी जो है क्यूबेक ने भी कहा जी कि ये जो नंबर ऑफ टेम्पररी इमिग्रेंट्स और स्पेशली जो असाइलम सीकर्स हैं पिछले लास्ट 2 ईयर्स में बेतहाशा यहां पे आए हैं और इनकी जो तादाद है वो 300,000 से 600,000 हो गई है और कोई फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प हमें नहीं है इनको मैनेज करने के लिए। इसके साथ साथ अल्बर्टा की प्रीमियर डेनियल स्मिथ जो है उन्होंने भी ये कहा है जी कि गवर्नमेंट जो है हमारी बिल्कुल इसके खिलाफ है कि असाइलम सीकर्स को यहां पर लाया जाए। अल्बर्टा जो है वो कैनेडियन पॉपुलेशन का टोटल जो है 11.8% रिप्रेजेंट करता है लेकिन हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं 22%, यानी कि ओवर 70,000 जो यूक्रेन से जो यहाँ पे वैक्यूज जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में हमको कोई भी हेल्प नहीं दी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि अल्बर्टा इज नॉट ओपन फॉर एडिशनल असाइलम सीकर्स। नोवा स्कोशिया के जो प्रीमियर है टिम हुस्टन, उन्होंने भी एक्स के ऊपर कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट हजारों की तादाद में असाइलम सीकर्स जो है उनको यहां पे भेज रहे हैं। नोवा स्कोशिया जो उसके पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है इनको एब्जॉर्ब करने के लिए। जर्मी हैरिसन सस्कैचुअन के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी कि हमारा प्रोविंस जो उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का कि हम इन रिफ्यूजीज को रीसेटल करेंगे। जॉन रस्टैड जो है लीडर ऑफ बीसी कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने भी ओटावा को कहा है कि भाई आप ये जो 21,000 असाइलम सीकर्स यहां पे बीसी के अंदर लाना चाहते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, ये बिल्कुल आपका रेकलेस डिसीजन है। तो मतलब प्रीमियर्स जो हैं वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं इनसे ट्रूडो साहब से। तो अब पता नहीं है कि अब गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर क्या अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन वैसे तो इमिग्रेशन जो मिनिस्ट्री है उसने काफी पैसे इन लोगों के लिए रखे हैं साइड पे, लेकिन अब प्रोविंसेस को भी दिए जा रहे हैं या नहीं वो अब दूसरी बात है। हेल्थ कनाडा ने आज ऑफिशियली बैन किया है यूज ऑफ ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल जिसको कहते हैं BVO एज फूड एडिक्टिव, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इसके बहुत सारे हेल्थ रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व हैं। वो कहते हैं जी कि FDA ने जिस वक्त इसको बैन किया था August 2 को तो उसी को हम फॉलो अप कर रहे थे और अब हेल्थ कनाडा ने भी इसके जो हैं हेल्थ रिस्क देखे हैं और इसको बैन कर रहे हैं। ये बैन जो है ये अब इम्पैक्ट करेगा बहुत सारे फूड और बेवरेजेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको। BVO जो है केमिकल होता है जो कि प्राइमरली यूज होता है एज एमल्सीफायर इन सर्टन बेवरेजेस, क्योंकि क्या होता है कि कोई जो बेवरेजेस जिसके अंदर ऑयल और वाटर होता है वो जब आप उसको हिलाएं ना तो पानी अलहदा हो जाता है और ऑयल ऊपर आ जाता है, तो ये जो है BVO उसको ब्लेंड कर देता है। ये ज्यादातर यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, खासतौर पर वो जिसमें सिट्रस फ्लेवर्स होते हैं और स्पोर्ट्स बेवरेजेस होते हैं, ताकि ये ऑयल और वाटर जो है अलहदा अलहदा ना रहे और ये ऊपर ऑयल ऊपर फ्लोट ना करे उन ड्रिंक्स के। तो अब इसको इन्होंने कहा था, पता नहीं है कि अब ये जो बेवरेजेस की कंपनीज हैं अब ये क्या नई जो है वो स्ट्रेटेजी निकालेंगे। आज की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है दुनिया में वो स्पेन ने मुस्लिम वर्ल्ड से जो है हेड्स बुलवाए हैं और उनकी बड़ी हाई लेवल मीटिंग स्पेन के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज की है और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज से भी लोग मंगवाए हैं ताकि गाजा के अंदर ये जो वॉर चल रही है इसको एंड किया जा सके और एक स्केड्यूल बनाया जा सके जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा जाए जिसमें कि टू स्टेट सोल्यूशन दिया जाए जिसमें कि इसराइल और पैलेस्टाइन जो है साथ साथ रह सकते हैं। स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर जो है जॉस मैनुअल अल्वारेज, उन्होंने आज रिपोर्टर्स को बताया कि हम पुश करना चाहते हैं एंड ऑफ गाजा वॉर जो कि बहुत ज्यादा वायलेंस यहां पे बढ़ गई है और टू स्टेट सॉल्यूशन को भी इंप्लीमेंट करने के लिए हम कह रहे हैं। नॉर्वे स्लोवेनिया यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल, पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफा, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, तुर्की के जो हैं ऑफिशियल्स वो इसको अटेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि तमाम के बीच में क्लियर विलिंगनेस है कि ये इन तमाम स्टेप्स के ऊपर पार्टिसिपेट किया जाए और ये भी कि जो पैलेस्टाइन है वो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करे, तो इसलिए हम एक पीस डील टेबल पे रखना चाहते हैं और टू स्टेट सॉल्यूशन भी डिस्कस करना चाहते हैं। May 28 को स्पेन और नॉर्वे और आयरलैंड ने फॉर्मली ये रिकग्नाइज किया था कि एक यूनिफाइड पैलेस्टीनियन स्टेट जो है रूल्ड बाय पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कंप्राइजिंग गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक विद ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल, ये उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल इसको रिकग्नाइज करते हैं। 146 ऑफ 193 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स जो है वो अब रिकग्नाइज करते हैं पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को। स्पेन कहता है कि हमारा मकसद यही है कि अब इन चीजों को आगे लेके जाया जाए। तो अब अंकल सैम नहीं मानेंगे तो फिर ये कैसे चीजें आगे चलेंगी। भारत जी आज की एक बहुत ही धांसू न्यूज और ये जो है दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड और ये कमाल की है सऊदी अरेबिया ने, सऊदी सर्जन ने परफॉर्म किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक हार्ट। रोबोटिक हार्ट का ट्रांसप्लांट किया है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक 16 साल के बच्चे के अंदर। ये 2.5 घंटे की सर्जरी थी जिसको के सऊदी कार्डिक सर्जन डॉक्टर फराज खलील ने जो है ये किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अंदर किया है। ये बच्चा जो है स्टेज 4 हार्ट फेलियर जो है वो फेस कर रहा था। ये जो रोबोटिक हार्ट है ये अब हेल्प करेगा इसको ब्लड पंप करने का थ्रू आउट द बॉडी, और ये बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने अपनाई है। इसमें वो क्या करते हैं, असेस करते हैं पहले तो तकलीफ, और फिर हार्ट को रिप्लेस करते हैं विद मिनिमल, बिल्कुल मिनिमल जो उसके अंदर इन्वेसिव अप्रोच होती है वो अपनाई जाती है। इसके अंदर वर्चुअल सिमुलेशन जो है वो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, और ये इनको 3 दिन लगे इस सारी चीज को जो है एग्जैक्टली जगह पे बिठाने के लिए, और उसके बाद बिल्कुल छोटे से एक जो है वो कट से इन्होंने हार्ट जो है ट्रांसप्लांट किया। तो वो जो यूजुअल किस्म की जो कॉम्प्लिकेटेड हार्ट ओपन हार्ट सर्जरीज होती थी बिल्कुल उससे हट गया, जिसमें कि पूरा जो है आपका सीना खोल देते थे और फिर आपकी वेन जो है एक आपके पैर में से आपकी टांग में से निकाल के डालते थे, बिल्कुल उससे हट गया। तो अब ये रोबोटिक हार्ट जो है उस बच्चे के दिल के अंदर बड़ा सक्सेसफुली लगाया। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के इसी हॉस्पिटल में और भी बहुत सक्सेसफुल सर्जरीज की जा रही हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट फुली रोबोटिक लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो भी किया गया है सऊदी अरेबिया के एक आदमी के अंदर, जिसके 66 ईयर्स जिसकी एज थी। और इस तरह के और भी ट्रांसप्लांट्स जो हैं अब इस स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर किया जा रहा है। अभी तक ये तमाम के तमाम सर्विसेज जो हैं ये सऊदी नेशनल्स को ही ऑफर की गई हैं। अलबत्ता इनका कहना है ये जो डॉक्टर खलील हैं यहां पे किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में, कि आने वाले दिनों में ये दूसरे लोगों को भी ऑफर होगा। जाहिर है कि दूसरे लोगों से तो ये लोग पैसे लेंगे जो ये करवाने आएगा, अपने सऊदी नेशनल्स जो हैं उनको ये सर्विसेज फ्री दी जाती हैं। अल जजीरा की ये रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ग्लोबल पावर्स को कहा है कि इमीडिएटली इसराइल का ये जो ऑपरेशन है इसको खत्म किया जाए, और ये जो इसराइली मिनिस्टर्स हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलीगल अटैक्स इन ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। इसके अंदर इन्होंने नाम लिया है इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन गवीर का और दूसरे कुछ लोगों का भी, कि उनके ऊपर फॉरन सैंक्शंस लगाई जाए क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसराइली सेटलर्स को, और पुलिस को भी रोका जाए कि वो इतनी ज्यादा वायलेंस ना करे अगेंस्ट लोकल रेजिडेंट्स ऑफ वेस्ट बैंक। ह्यूमन राइट्स वॉच के जो डायरेक्टर ऑफ क्राइसिस एडवोकेसी हैं अक्षय कुमार, उन्होंने कहा जी कि ये एट्रोसिटी जो है ये बहुत ज्यादा चलना शुरू हो गई है वेस्ट बैंक में, जिसको रोकना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी एजेंसी UNRWA ने भी ये कहा है जी कि हमारे लोगों को जो है मारा जा रहा है। जब ये अब रिपोर्ट आई तो इसके ऊपर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब ने भी कहा है जी कि ये जो लोग इधर मारे जा रहे हैं जो कि 6 के करीब थे, तो इनको रोकना और इनकी जो प्रोटेक्शन है ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स की वो बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये इशू हम हर वक्त रेज करते रहेंगे इसराइल के साथ। और साथ ही अमेरिका जो है उसने कहा जी कि हम इसराइल को जो है असलाह देते रहेंगे। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई एट्रोसिटीज रोको एक तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी भैया ना आप हमसे जितना मर्जी असलाह चाहते हो वो भी हम आपको देते रहेंगे। तो आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, यू नो कोई आपकी एक क्लियर पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए जो कि नहीं है, ऐसे है। लेकिन आज मुझे बड़ी हैरत हुई है देखे कि इतना बड़ी पोजीशन पे ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर जो हैं वो भी एक ये इंडियन लड़का है अक्षय कुमार, क्या बात है जी। तालीम जो है इनको किधर किधर लेके जा रही है, क्या बात है, क्या बात है। यूके के फॉरेन ऑफिस जो है उसने आज कहा है कि ये जो रशिया ने हमारे पे एलिगेशंस लगाए ऑफ स्पाइंग, जिसके के अंदर रशिया ने जो है ब्रिटिश डिप्लोमैट्स को निकाला है मॉस्को से, 6 के करीब जो ऑफिशियल्स हैं उनको, ये बिल्कुल एलिगेशंस जो हैं गलत हैं। ये उस वक्त हुआ है जबकि पुतिन साहब ने वार्न किया है वेस्ट को कि वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स जो हैं टू टारगेट रशिया ना दें, और फिर उसके बाद जो 6 यूके के ऑफिशियल्स थे उनको एस्पायनाज चार्जेस के ऊपर जो है वो निकाल दिया गया मुल्क से। उन्होंने कहा जी कि अगर ये ऐसा वेस्ट करेगा तो नेटो जो है इसका मतलब है डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, और यूक्रेन अगर कोई भी वेस्टर्न मिसाइल्स यूज करेगा रशिया के ऊपर तो इसका मतलब है इट इज ऑल आउट वॉर। यूके फ्रांस जो है उन्होंने ऑलरेडी ये जो स्टॉर्म शेडो मिसाइल्स जिनकी के बाद पुतिन साहब कर रहे हैं वो यूक्रेन को दिया है, और उनको कहा जी कि कीव जो है अपने बॉर्डर के अंदर इनको यूज कर सकता है, यानी कि अगर कोई जो है मिसाइल उड़ के आता है रशिया का इनके मुल्क के अंदर तो अपने मुल्क के अंदर जो है वो इसको इनसे तबाह कर सकते हैं। ये मिसाइल्स जो है ये लॉन्च होते हैं एक एयरक्राफ्ट से और फिर हवा की स्पीड पे उड़ते हुए जाते हैं, और बड़े ह्यूज टेरेन से बड़ी तेजी से जाते हुए ये जिस वक्त जिस भी टारगेट पे पड़ते हैं या जिसको रोकना चाहते हैं वहां पे बहुत हाई एक्सप्लोजन होता है उसका वॉरहेड का, जिसकी की वजह से काफी तबाही आती है। बाइडेन साहब जो है वो अब होस्ट कर रहे हैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सर कीर स्टार्मर व्हाइट हाउस में, और वो अब डिस्कस करेंगे कि हमको कितना यहां पे इनको मिसल्स और बाकी चीजें यूक्रेन को कितनी देनी है। रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके मुताबिक स्टॉर्मर साहब जो हैं वो पूछेंगे बाइडन साहब से कि क्या उनकी इजाजत है कि यूक्रेन को यूके फ्रेंच मेड स्टॉर्म शैडो मिसल्स यही वाले जो हैं जिनकी पुतिन साहब बात कर रहे हैं कि हम उनको इजाजत दे सकते हैं कि वो 250 किलोमीटर की रेंज पे भी यूज कर सकें और स्ट्राइक कर सकें रशिया के अंडर। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हैं फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी और ये अब आज वाशिंगटन पहुंचे हैं और ये बातचीत कर रहे हैं पुतिन साहब से बाइडन साहब से। तो इसके ऊपर जो है वो काफी भरल जो है वो ले दे हो रही है। बाइडन साहब ने आज अनाउंस किया है कि वो स्टेप्स लेंगे कि ये जो चाइनीज कंपनीज जो कि जैसे कि शीन और टेमू जो हैं जो कि बहुत ज्यादा अब्यूज कर रही हैं लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड लॉज को क्योंकि उसमें ये उनका लॉ है कि लो वैल्यू शिपमेंट्स जो हैं वो एंटर हो सकते हैं यूएसए के अंदर विदाउट पेइंग इम्पोर्ट ड्यूटीज, उसके खिलाफ जो है ये स्टेप अप करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि ये यूएस चाइना टैरिफ्स जो हैं इनको हम जो है अब कोई स्पेशल कस्टम्स एग्जेम्पशंस नहीं दी जाएंगी अंडर यूएस चाइना टैरिफ्स जो ये अब नया लॉ लेकर आएंगे उसके अंडर। वो कहते हैं जी कि इनको हम कहते हैं डिमिनियंस लूप होल और ये ट्रेड प्रोविजन है जिसके के तहत जो पैकेजेस लेस देन $800 होते हैं वो यूएस के अंदर बहुत ही कम स्क्रूटनी से एंटर हो जाते हैं और उनके ऊपर जो है ज्यादा कस्टम्स ड्यूटी भी नहीं लगाई जाती है। पिछले 10 साल से 140 बिलियन से ज्यादा होते हुए 1 बिलियन तक ये चीजें जो हैं ये अब इधर शिप हो रही हैं अमेरिका के अंदर अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस। और वो कहते हैं जी कि इनको टारगेट करना और इनको ब्लॉक करना ये जो इलीगल और अनसेफ शिपमेंट्स टू यूएसए इनको बड़ा मुश्किल हो गया। अगेन अनदर इंडियन दिलीप सिंह डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स व्हाइट हाउस में जो है उन्होंने आज रिपोर्टर्स को बताया कि ये जो चाइनीज लिंक्ड ऑनलाइन रिटेल जायंट्स हैं शीन एंड टिमू इनको रोकने के लिए ये करना ही पड़ेगा क्योंकि जो लोकल इंडस्ट्री है फिर उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो सफर कर रही है। क्या बात है भाई इंडियंस की पढ़ाई जो है कहां कहां उनको लेकर गई है। और इस वक्त तो बेशुमार जो है ये इंडियंस व्हाइट हाउस के अंदर भी हैं और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड्स बने हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूं एजुकेशन टेक यू टू प्लेसेस, तो बस जब तक हाई एंड एजुकेशन नहीं लेंगे आपके बच्चे कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो इंडियंस ने यही किया पिछले 30-35 साल में, उन्होंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया। तो ऐसे अच्छा जनाब एक फेक वीडियो जो कि बड़े सेंसेशनलाइज कर रही है और बड़ा जो फिर रही है सोशल मीडिया पे जिसमें दिखाया जा रहा है कि फ्रांस और यूएई के तालुकात जो हैं वो बेतहाशा खराब हो गए हैं आफ्टर टेलीग्राम सीईओ पेवल डुरोव जिसके के पास डबल नेशनैलिटी है यूएई की भी और फ्रांस की भी, उसको जो डिटेन किया गया था पेरिस में तो उसकी वजह से इनके तालुकात बड़े खराब हो गए हैं। और पता ऐसा चल रहा है कि जैसे रशिया से जो है ये निकला है, एसोसिएटेड प्रेस जो है उसने आज ये न्यूज दी है और वो कहते हैं जी वैसे तो मैं समझ नहीं आ रही कि रशिया ऐसे क्यों कर सकता है उसके ऑपरेटिव्स, क्योंकि रशिया के भी बड़े अच्छे तालुकात हैं यूएई के साथ और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वहां पे जो लोग हैं रशियन बिजनेसमैन उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी किए हुए हैं। भारत जी वो कहते हैं लगता हमें सोर्स जो है वो रशिया है। ये जो फेक वीडियो सामने आई थी August 27th को ये शो करती है कि ये जी जैसे अल जजीरा की खबर है क्योंकि इसके अंदर अल जजीरा का लोगो चल रहा है और जिसमें बताया जा रहा है कि यूएई गवर्नमेंट ने हॉल्ट कर दिया द परचेज ऑफ 80 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस वर्थ $18 बिलियन। और उसके अंदर उन्होंने लिंक किया है दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और क्राउन प्रिंस जो है उनके सन फिजा जिसको कहा जाता है इस डिसीजन के लिए। वो कहते हैं जी कि ऐसा कोई डिसीजन दुबई की या यूएई की गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं है, यूएई और फ्रांस के बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स हैं बल्कि फ्रेंच मिलिट्री ऑपरेट जो है मिलिट्री ऑपरेट करती है एक नेवल बेस यहां पे, इसके अलावा फ्रेंच वॉर प्लेन्स और पर्सनल जो है वो एक मेजर फैसिलिटी जो कि अबूधाबी के बाहर है वहां पर स्टेशन है। अल जजीरा से जब पूछा गया है एसोसिएटेड प्रेस ने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल एब्सोल्यूटली फेक न्यूज है, हमने इस तरह की कोई खबर जो थी नहीं चलाई थी। तो अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये जो सोशल मीडिया ये कितना खतरनाक है और ये कितनी गलत खबरें चलाता है और ये प्रॉब्लम्स जो है पैदा करता है लोगों के लिए। अच्छा जनाब फ्लड्स और जो लैंडस्लाइड्स हैं उन्होंने यहां पे साउथ एशिया की तरफ काफी तबाही मचाई हुई है। हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस इन म्यांमार जो है उसके अंदर वाटर्स और फ्लडिंग चल रही है जो कि ये खासतौर पर इनका नेपिंग डॉ का एरिया है और वियतनाम जो है उसके अंदर भी और थाईलैंड में भी और लाओस में भी सारी जगह पे बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई है ये जो टाइफून यागी आया था उसकी वजह से सारे इलाकों में फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं और इन चार कंट्रीज के अंदर जो डेथ टोल है वो अब 280 को टच कर रही है। इसमें से 233 अलोन इन वियतनाम है, 36 म्यांमार में है और उसके अलावा फिर जो है थाईलैंड में और लाओस में भी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, हजारों ही लोग वो मिसिंग हैं। म्यांमार के अंदर 50,000 लोग जो थे उनको अपने घर छोड़ने पड़े थे। सोल्जर्स जो हैं कॉन्स्टेंटली इन तीनों चारों कंट्रीज के अंदर जो हैं रेस्क्यू के ऑपरेशंस कर रही हैं। रेड रिवर जो है हनोई के अंदर जो कि वियतनाम का कैपिटल है, वो कहते हैं जी उसका लेवल 20 ईयर्स में सबसे ज्यादा ऊपर चला गया है और 13,000 लोगों को नॉर्दर्न वियतनाम से इवैक्यूएट किया गया है जब ये टाइफून यागी ने इनको हिट किया था। इसके अलावा 135,000 होम्स जो हैं वो बिल्कुल बुरी तरह से जो हैं डैमेज हुए हैं। तो काफी तबाही जो है इन चार कंट्रीज में फ्लड्स और रेन्स ने मचाई हुई है। ये भी जो आज खबर थी इसने भी आज दुनिया को काफी चौंकाया और बहुत 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 हैरत अंगेज बात है। आपको पता ही है कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था और उसके बाद उन्होंने हमेशा शेख मुजीबुर रहमान को याद किया कि जी वो फादर ऑफ द नेशन है। इन अ वेरी फर्स्ट बांग्लादेश ने फॉर द फर्स्ट टाइम जिना साहब की डेथ एनिवर्सरी जो है उसको मनाया है ढाका के अंदर। ये जो इवेंट था इसको ऑर्गेनाइज किया था नवाब सलीमुल्लाह एकेडमी ने एट फजल हुसैन मानिक मियां हॉल ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर और यहां पे उर्दू में बातचीत की गई, उर्दू के गाने गाए गए और उर्दू की पोएट्री जो है वो पढ़ी गई। पाकिस्तान के डेप्यूटी हाई कमिश्नर कामरान डंगल जो हैं वो इस जगह पे मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफिसर रहमान जो हैं उन्होंने अपना की नोट पेपर दिया और उन्होंने जिना साहब की लाइफ के ऊपर एक शानदार किस्म का जो है वो आर्टिकल जो तैयार किया था उसके ऊपर पढ़ा। इसके बाद एकेडमी के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अब्दुल जब्बार और जर्नलिस्ट मुस्तफा कमाल मौजूमदार उन्होंने भी जो है जिना साहब की जम के तारीफ की। एक जो पोएट है जफरुल हक उन्होंने उर्दू की एक पोएट्री पढ़ी और कुछ सॉन्ग्स जो थे उसके उर्दू में उनके ऊपर परफॉर्म किया। दो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने जो बांग्लादेश में स्टडी कर रहे हैं। नागौरिक परिषद एमडी शमशुद्दीन जो हैं जो कि इवेंट के कन्वीनर हैं उन्होंने कहा जी कि बांग्लादेश जो था अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा 1947 में ना होता और हिंदुस्तान के साथ रह जाता तो आज हमारा भी हाल वही होता जो कश्मीरियों का और बंगालियों का वेस्ट बंगाल के अंदर और कश्मीर के अंदर हो रहा है, जहां पे कि इंडियन जनता उनकी गर्दनों पे जो है वो वेपन्स रख के उनसे काम करवाती है। बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस जो है इट इज ड्यू टू पाकिस्तान और पाकिस्तान बना था जिना साहब की वजह से, इसलिए हमारे हीरो भी जिना साहब हैं। ये जो अननेसेसरीली नाम चेंज किए गए थे अल्लामा इकबाल हॉल का और जिना एवेन्यू का वो हमने नहीं किए थे, वो दिल्ली के कहने पे जो है पुरानी गवर्नमेंट ने किया था। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन चीजों का नाम चेंज किया जाए। इसके अलावा वहां पे स्पीकर्स ने कहा कि बांग्लादेश को चाइना और पाकिस्तान के साथ ज्यादा दोस्ती बनाने की जरूरत है और जिना साहब का जो विजन है उसको अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान ना तो बांग्लादेश जिना की विजन के बगैर नहीं बन सकता था। इसलिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश को भी जिना को फादर ऑफ द नेशन कहना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि आने वाले दिनों में हम होप करते हैं कि हम जिना का बर्थ और डेथ एनिवर्सरी जो है वो मना सकेंगे। और एक जो स्पीकर थे उन्होंने तो ये यहां तक कहा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस थी 1857 के बाद, अगर जिना जैसा विजनरी ना होता तो ये पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस कभी एंड ही ना होती। तो ये जनाब जो है वो बड़े रिच ट्रिब्यूट्स जो हैं जिना साहब को दिए गए, विच इज ट्रू एब्सोल्यूटली। और वैसे भी आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग की तो बुनियाद रखी ही थी वहां पे बांग्लादेश जो अब है उधर, और जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने इनिशियल पैसे दिए थे मुस्लिम लीग को रन करने के लिए। तो बंगाली जो हैं वो तो वो थे मेन जिन्होंने बुनियाद रखी थी मुस्लिम लीग की, तो हम कैसे उनको भी भूल सकते हैं। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय पायल ज्वेलर्स और पायल ज्वेलर्स जो हैं दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन के अंदर। अगर आपको अपने किसी भी इवेंट के लिए कोई भी उनसे ज्वेलरी लेनी है 22 कैरेट गोल्ड में तो आप उनको कॉल कर सकते हैं एट 9057907879 और जनाब ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट ब्रिज टेस्ट में फैसल चट्टा साहब होते हैं, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं आपको पता ही है, एक मिसेस सागा में और एक ओकविल में, जबरदस्त नाश्ता होता है, 11 बजे ये लोग नाश्ता शुरू करते हैं, तो आप जरूर अगर आपको नाश्ता करना है इनके तो आप ब्रिज टेस्ट में जाएं। मिसेस सागा में जो रेस्टोरेंट है उसका नंबर है 9052323663 और जो ओकविल में है उसका नंबर है 9052262294, तो आप कॉल करें और वहां पे जाके खाना खाएं और एंजॉय का मजा लें। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी कि फाइनेंशियल जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी लाने की जरूरत है। ये एड्रेस कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस का फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ फ्यूचर ग्लोबल कॉल इन न्यूयॉर्क, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये कर रहे थे, और उसमें इन्होंने कहा जी कि हमको जो है ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको डेवलपमेंट असिस्टेंस मिलनी चाहिए, लैंडिंग मिलनी चाहिए और कुछ स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए ताकि जो वल्नरेबल नेशंस हैं वो अपने जो हैं वो ये जो हैं टारगेट्स जो हैं वो उनको कर सकें और जो दुनिया में चैलेंजेस हैं उनके खिलाफ जो है वो काम कर सकें। उन्होंने कहा जी कि हमारा जो कलेक्टिवनेस है उसको कॉन्स्टेंटली थ्रेट है और हम बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कोई कलेक्टिवनेस इस वक्त लोगों के अंदर नहीं है, हर कोई जो है वो वी के ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता है, हर कोई आई पे बिलीव करता है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी और इनजस्टिस जो है वो फैलता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जो गाजा के लोगों की हालत है वो इसीलिए है कि हम उनका ख्याल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि ये बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका के डेट चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उसकी वजह से क्लाइमेट के बहुत इश्यूज हैं और दूसरे जो हैं हेल्थ के एजुकेशन के मसले बन गए हैं, उनके ऊपर हमको एक सिंपथेटिक आय रखना पड़ेगा, हमको नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी है वो जो इफेक्टिवली सेफ गार्ड कर सकती है जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको मिसयूज ना किया जाए। तो जनाब ये उन्होंने बात की। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट अब इंट्रोड्यूस करा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन नेशनल असेंबली ऑन सैटरडे और इसके अंदर जो है वो बातचीत होगी जिसके के अंदर जो जजेस हैं रिटायर्ड जजेस उनको यानी कि जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ावा देने की बात की जाएगी। पहले तो इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे और उन्होंने कहा था जी कि सेनेट के अंदर 3 वोट्स हमारे कम है, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और इसके लिए हम अब गवर्नमेंट जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स पेश करेगी इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज। आर्टिकल 179 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है वो 65 की ईयर्स तक ज्यादा अपना पोस्ट पे नहीं रह सकता अनलेस उसको जल्दी वो रिजाइन कर दे या उसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी अपनी पोजीशन से रिमूव कर दिया जाए। इसी तरह आर्टिकल 195 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट के जजेस के लिए कहता है कि वो 62 ईयर्स की एज तक जो है वो जजेस रह सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो खुद रिजाइन कर दें और उनको या फिर रिमूव किया जाए। तो गवर्नमेंट इंटेंड करती है कि ये रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 68 और हाई कोर्ट के जजेस की 65 तक की जाए। इससे पहले जो है JUIF के जो लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने बड़ी एक पैशनेट स्पीच की थी, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को एक्सटेंशन दी जाए, हम नहीं चाहते कि एक्सटेंशन जुडिशरी में या कि फौज में या कि ब्यूरोक्रेसी में कहीं पर भी दी जाए, अगर ऐसा है तो फिर वो हंस के बोले कि पूरी पार्लियामेंट भी हंसी जिसमें उन्होंने कहा जी तो फिर तो हमको भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए लॉ मेकर्स को। तो उन्होंने फिर अपनी पार्टी को कहा था कि इस वोटिंग से ये जो अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं इससे बिल्कुल आप अलहदा रहें। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया है केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर और उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने कमेंट्स दिए हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ डायलॉग होल्ड कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं जी किसी प्रोविंस को इजाजत नहीं है कि वो किसी भी फॉरेन कंट्रीज के साथ जो है वो डायलॉग करे, ये काम सिर्फ स्टेट कर सकती है। चीफ मिनिस्टर साहब का जो ये कमेंट है ये अटैक करता है फेडरेशन को और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। चीफ मिनिस्टर साहब जो अपनी स्पीच कर रहे थे पब्लिक रैली में इस्लामाबाद में, उसका एक हिस्सा ये भी था कि जिसमें उन्होंने कहा था जी कि हमारे जो प्रोविंस में बहुत ज्यादा ये जो टेररिज्म बढ़ गया उसकी वजह से हम जो है अफगानिस्तान गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई के लीडर्स जो हैं वो खुद ये जो अच्छा एनवायरमेंट है उसको पोल्यूट कर रहे हैं और यहां तक अब तो हालत पहुंच गई है कि एक दूसरे के साथ अब हम हाथ भी नहीं मिलाते हैं। हमने हमेशा जब भी हम पीडीएएम की गवर्नमेंट थी तो हम इनको कंसल्ट करते थे तमाम इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन में, लेकिन पॉलिटिक्स में से जो टॉलरेंस है वो खत्म होती जा रही है और वो इसी तरह इसीलिए हो रही है कि ये गुड एनवायरमेंट पॉलिटिक्स में नहीं रहने देते हैं। उसके रिस्पॉन्स में पीटीआई के जो असद कैसर साहब थे, उन्होंने कहा जी कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि चीफ मिनिस्टर साहब अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ग्रैंड जिरगा बनाना चाहते हैं और हम फेडरल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल जो बाकी के नोटेबल्स हैं उनके साथ मिलकर ये करना चाहते हैं। लेकिन आप खुद ही बताएं, अगर रोज केपी के अंदर बॉम्ब एक्सप्लोड होंगे तो क्या केपी जो है फिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात न करे? हमको अपनी लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो चिंता दिखानी पड़ेगी। और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो स्पेशल कमेटी फॉर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट जो थी उसकी पहली ही मीटिंग के बाद जो हैं वो बाहर आ गए। नेशनल असेंबली सेशन में बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मुझे लग रहा है कि ये जो बनाया गया है कमेटी फॉर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट ये सिर्फ पीटीआई के लिए बनाया गया है, हालांकि हम तो चाहते थे कि जो भी किसी के कंसर्न्स हैं उनको किया जाए। काफी हीटेड फिर इनके बीच में स्पीच हुई इनके और जो पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान के बीच में। इस सेशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा जो है उन्होंने कहा जी कि ये पार्लियामेंट जो है अंडर अटैक है और जिस तरह से रोका गया है पीटीआई के ऑफिशियल्स को और पकड़ के उनको लेकर गए हैं तो हम उनके साथ इस असॉल्ट के अगेंस्ट यूनाइटेड उनके साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने इन एक्शंस को बहुत कंडेम किया और उन्होंने कहा जी कि जो है आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि एक फोन कॉल आया था फैज हमीद साहब का उस वक्त सेनेट के इलेक्शंस के बीच में और हमारे साथ भी बड़ा बुरा सलूक किया गया था, लेकिन जैसे कि इस वक्त सादिक साहब ने जो कि स्पीकर हैं उन्होंने जो एक्शन लिया उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने लिया, ये हमने आपको एक दिन पहले भी बताई थी खबर, उसमें उन्होंने कहा जी गौर साहब ने इसके ऊपर कहा जी कि हमारा फोकस जो है पुरानी बातों पर नहीं होना चाहिए बल्कि हमको फ्यूचर का सोचना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई के जो पास्ट के एक्शंस हैं वो ही क्लीन नहीं है तो फिर आगे हम कैसे चल सकते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है गंडापुर साहब की जो स्पीच के ऊपर भी टिप्पणी दी कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये कैसे आप कहते हैं कि जी आपके ऑफिशियल्स के साथ बात भी की जाए और आपके पुराने एक्शंस को भी भूल जाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी उसने नलीफाई किया है पीटीआई लॉ मेकर्स का एट डेज का जो फिजिकल रिमांड था इन इस्लामाबाद रैली केसेस में। दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस जो हैं आमिर महमूद और समन रफत इम्तियाज उन्होंने अपना जजमेंट जो है वो रिजर्व किया। उन्होंने जो है ये जो संगजियानी के अंदर इनका हुआ था जलसा हुआ था पीटीआई में उस सितंबर 9 में उसमें बहुत सारे इनके जो ऑफिशियल्स थे उनको पकड़ा था। एटीसी के जो जज थे अब्दुल हसनाद मोहम्मद जुल्कर नैन उन्होंने शेर अफजल मरवत जुल्कर जैन कुरैशी आमिर डोगर नसीम शाह अहमद चट्टा शेख वकास अकरम और शोएब शाहीन को जेल में भेजा था। ये आज इनका केस जब जस्टिस फारूक सुन रहे थे तो वो हंसना शुरू हो गया, उन्होंने कहा ये तो कॉमेडी ऑफ एरर्स मुझे लग रहा है और जिस किसी ने भी एफआईआर इन सब लोगों के खिलाफ लिखी है मुझे लग रहा है कि एक ही चीज उसने कट कॉपी पेस्ट की है और एक भी चीज उसमें बदली नहीं है विच इज वेरी गुड कॉमेडी, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए था उनके बीच में। और ये किसने इनको ऑर्डर दिया फिजिकल रिमांड का और ये बहुत ही अजीब किस्म का वाकया है और चार दिन से तो वो पुलिस कस्टडी में है तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में तो आपने सब कुछ किया होगा उनसे उगलवाने के लिए, तो अगर चार दिन में कुछ नहीं कर सके तो और आठ दिन आपको क्यों चाहिए? ये रिडिकुलस एलिगेशंस हैं जो आप उनके ऊपर लगा रहे हैं और अगर एलिगेशन ट्रू भी हैं तो ये थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर चलने चाहिए। ये जो आपने कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई है इसके ऊपर तो आप एक फिल्म बना सकते हैं और ये बड़ी क्योंकि फैसिनेटिंग होगी तो वहां पे सारे लोगों ने हंसना शुरू कर दिया जाहिर है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग हम आपको कोट करते हैं चीज जो कि आज अरविंद केजरीवाल के सिलसिले में हुए। आपको पता ही है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बड़े अरसे से बीजेपी की गवर्नमेंट ने निशाना बना के जेल में डाला गया था, आज उनको बेल मिली है। उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज हैं उन्होंने आज बड़े ऐतिहासिक हिस्टोरिक वर्ड्स कहे हैं जो कि अगर चाहे अदालत तो पाकिस्तान में भी यूज कर सकती है जो इमरान खान साहब को इतने अरसे से डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये वर्ड्स हैं प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन यानी कि लंबी जेल बिफोर बीइंग प्रोनाउंस्ड गिल्टी, गिल्टी प्रोनाउंस करने से पहले ही जो आपने ये लंबी जेल में लोगों को डाल दिया जाता है फॉर ऑफेंस यानी कि किसी भी क्राइम के लिए शुडंट बी परमिटेड, बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बिकम पनिशमेंट विदाउट ट्रायल, यानी ट्रायल आपने किया नहीं है और पनिशमेंट आपने पहले ही दे दी है। तो ये जनाब जो गोल्डन वर्ड्स हैं ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जुडिशरी भी अगर अपना ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर जनाब चीजें काफी ज्यादा भड़की हुई आज भी नजर आई, क्योंकि राहुल गांधी जी जो गए थे यूएस में और वहां पे उन्होंने जो सिख कम्युनिटी के बारे में बातें की हैं, उसके बाद आपने हमने आपको हरदीप सिंह पुरी जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं उनका भी मैं हमने आपको बयान बताया था, और आज फिर चीजें जो है, आज तो बहुत ही खतरनाक और गंदी बातें की गई राहुल गांधी के बारे में। बीजेपी के लीडर जो हैं उन्होंने बाकायदा अब थ्रेट किया है राहुल गांधी को फॉर हिज रिमार्क्स ऑन सिख कम्युनिटी, और कांग्रेस ने इस सिलसिले में कहा है कि इस आदमी के खिलाफ जो है FIR लिखी जाए जो इसने राहुल गांधी के खिलाफ बोला है, और इसको इनकी सिक्योरिटी जो है उसको भी रिव्यू किया जाए। कांग्रेस ने एक क्लिप जो है वो शेयर किया है बीजेपी के लीडर तरविंदर सिंह मरवा का, जिसमें कि उन्होंने गांधी को थ्रेट किया है। दिल्ली बीजेपी के जो सिख सेल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था इनके रेजिडेंस के बाहर दिल्ली में, और उन्होंने कहा जी कि राहुल गांधी जी जो हैं वो माफी मांगे, लेकिन मरवा ने इस मौके पे कहा कि राहुल गांधी ऐसी बातें करने से मना हुए वरना उनका भी वही हशर किया जाएगा जो उनकी दादी का किया गया था। अब ये तो जनाब खुली धमकी है, यानी कि दादी यानी कि इंदिरा गांधी जी। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पंजाब असेंबली सीनियर कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा जो हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पार्टी हेडक्वार्टर्स में, और उन्होंने कहा जी कि राहुल गांधी का इस तरह से थ्रेट रिसीव करना बीजेपी लीडर से, इसके ऊपर फॉरेन गवर्नमेंट को खुद ही FIR लिख लेनी चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो फिर हम कोई इसके ऊपर इनिशिएटिव लेंगे। वो कहते हैं जी बीजेपी अगर इतनी सिंसियर है और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को रखना चाहती है तो वो बिल्कुल जो है एक्शन लेगी मरवा साहब के खिलाफ। फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर जो है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी जो है वो सिख कम्युनिटी के राइट्स के बारे में बात कर रहा था कि वो कैसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और बीजेपी जो है वो सिखों के इमोशंस के साथ प्ले कर रही है और राहुल गांधी को डिफेम कर रही है। बहरहाल जी ये बहुत ही जो है हम समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में गंद है, ये इधर भी आप देखें कि खुले आम दिन दिहाड़े जो है ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन को दिए जा रहे हैं धमकियां, तो अब इसके ऊपर तो कोई एक्शन भी नहीं लिया तो समझ में नहीं आ रहा कैसे चलेगा। आपको बताइए कि जम्मू और कश्मीर के अंदर अब जो है इंडियन ऑक्यूपाइज कश्मीर के अंदर आने वाले हैं इलेक्शंस, तो वहां पे भी चीजें भड़क गई हैं। उमर अब्दुल्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो इनकी पार्टी है, उन्होंने आज बहुत ज्यादा एक्यूज किया है PDP को, और उन्होंने कहा जी कि हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये बीजेपी के साथ अलायंस बना के उनको रीजन के अंदर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्होंने कमेंट्स उस वक्त दिए जब इल्तिजा मुफ्ती जो कि PDP की जो चीफ है महमूदा मुफ्ती उनकी बेटी हैं, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी। उमर ने रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए कहा कि ये जो इनकी चीफ की बेटी है उसने कहा है जी कि पोल्स के अंदर हम किंग मेकर्स रहेंगे, इसका मतलब है कि ये बीजेपी को वापस लाना चाहते हैं, और PDP की जो अलायंस थी बीजेपी के साथ 2014 में उसने बहुत ज्यादा वैली का बेड़ा गर्क किया, और वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसके आपके सामने ही हैं। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी को जो ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, और इल्तिजा जो थी असल में वो जो कंटेस्ट कर रही है PDP के स्ट्रांग होल श्री गुफारा बिज बहारा से, वो बात कर रही थी कि कोई भी सिंगल पार्टी इन इलेक्शंस में क्लियर मेजोरिटी लेकर नहीं आएगी, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि PDP जो है वो किंग मेकर का रोल प्ले करेगी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर जो है ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि दूसरी पार्टीज जो है वहां पे वो भी भड़क गई हैं कि लग रहा है कि जैसे ये बीजेपी के साथ अलायंस बना के उसको वापस जो है वैली में लाना चाहते हैं। ते भाईजान काफी गर्मा गर्मी इंडिया के बीच भी चल रही है। अच्छा जनाब संजय लीला भंसाली की बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड मूवी लव एंड वॉर, जिसके के अंदर स्टार करेंगे रणवीर कपूर आलिया भट्ट और विकी कौशल, और लोगों को बड़ा ही ज्यादा वेट था कि यह फिल्म आएगी 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 शायद, लेकिन अब फिर से क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये पहले कहा गया था कि ये आएगी इसी साल, फिर उसके बाद कहा गया कि ये क्रिसमस 2025 में आएगी, और अब कहा जा रहा है कि ये मार्च 20, 2026 को आएगी। ये चेंज जो है ये मूवी ऑफिशियल्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला है, और इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने वैसे जनवरी 2024 में की थी कि ये फिल्म जो है अगले साल आएगी, लेकिन अब ये अगले से अगले साल आएगी। एंड जनाब न्यूज ऑफ इमरान खान मेकिंग अ कम बैक इन बॉलीवुड। अब आप बोलेंगे कौन से इमरान खान, ओ भाई इमरान खान एक्टर, नॉट इमरान खान PTI के चीफ और पाकिस्तानी क्रिकेटर, नो इमरान खान जो है वो आ रहे हैं। अभी तक तो वैसे उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया है, लेकिन आपको पता ही है बड़ी मशहूर फिल्म उनकी थी जाने तू या जाने ना, जो 2008 में आई थी, बड़ी उसने जो है जबरदस्त बिजनेस किया था। तो अब पता चल रहा है कि ये वापस आ रहे हैं एक और फिल्म के साथ, और अब ये नजर आएंगे अपने अंकल आमिर खान के साथ। ये एक रोमांटिक कॉमेडी होगी जिसको के बना रहे हैं आमिर खान प्रोडक्शंस। इसके जो डायरेक्टर हैं दानिश असलम हैं, और जिन्होंने के काम किया था 2000 की फिल्म ब्रेक के बाद में भी, और उसमें इन्होंने एक बड़ी नई सी लड़की दीपिका पाडुकोन जो उसी वक्त आई थी उसको लिया था। तो अब जनाब ये एक और फिल्म में अपना कमबैक कर रहे हैं आमिर खान साहब। विशाल भारद्वाज जो हैं वो रीयूनाइट कर रहे हैं जी शाहिद कपूर साहब के साथ, और ये दोनों फिर से एक और फिल्म में पे काम करेंगे जिसको प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाढीर वाला, और इसके अंदर जो है तृप्ति दमिरी जो हैं वो फिर से नजर आएंगी। शाहिद कपूर ने अपने इंस्टा स्टोरीज के ऊपर लिखा, सुपर पम्प्ड फॉर दिस वन, कांट वेट टू बिगिन। साजिद नाढीर वाला ने भी अपने इंस्टाग्राम और एक्स के ऊपर लिखा, थ्रिल टू ज्वाइन फोर्सेज विद जेन्युइन डायरेक्टर एंड माई फ्रेंड विशाल भारद्वाज। शाहिद फिनोमिनल पावर हाउस, डिलाइटेड टू वेलकम इनक्रेडिबली गिफ्टेड तृप्ति। तो जनाब ये एक और मूवी जो है शाहिद कपूर की आने वाली है। और जनाब पोर्चुगीज फुटबॉल आइकॉन और जो सऊदी अरेबिया के स्टार जो प्लेयर हैं अल नसर क्लब के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो 39 ईयर्स, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है जी। ही हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू सरपैस 1 बिलियन फॉलोअर्स ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक एंड इवन इंस्टाग्राम। और इसके ऊपर बात करते हुए रोनाल्डो ने कहा कि इट्स मोर देन जस्ट अ नंबर, इट्स अ टेस्टमेंट ऑफ आवर शेयर्ड पैशन, शेयर्ड ड्राइव एंड लव फॉर द गेम। फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ मदीरा टू द बिगेस्ट स्टेजेस इन द वर्ल्ड, ऑलवेज आई ऑलवेज प्लेड फॉर माई फैमिली, आई प्लेड फॉर यू, एंड नाउ एट 1 बिलियन वी स्टैंड टूगेदर। तो जनाब इन्होंने ये बातें की। और जी ट्रेविस हेड कड ने जो बनाया 59, और लेग स्पिनर एडम जैम्पा ने जो 2 विकेटें ली फॉर 20, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया इंग्लैंड को 28 रन से इन द फर्स्ट T20 एट साउथहैम्पटन। हेड की क्विक फायर इनिंग्स जो थी उसने हेल्प किया ऑस्ट्रेलिया को बनाने के लिए 179, जो कि सोचा जा रहा था बहुत ही लो स्कोर है, लेकिन फिर भी इन्होंने डिफेंड किया इसको और डिसमिस किया होस्ट को फॉर 151। और इस तरह से अब जो ऑस्ट्रेलिया है 3-मैच सीरीज को 1-0 से लीड कर रही है। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट काइली एम्बापे। इन्होंने रिफ्यूज किया है फ्रेंच फुटबॉल लीग ने जो इनकी मीडिएशन के लिए इनकी ऑफर की थी बिटवीन हिम एंड पीएसजी फॉर अनपेड वेजेस। उसको इन्होंने कहा है कि मुझे किसी का मीडिएशन नहीं चाहिए है। इन्होंने कहा था कि मुझको मेरे बोनसेस और वेजेस चाहिए हैं, और पीएसजी मुझे ओ करता है 60.6 मिलियन US डॉलर्स, जबकि जो क्लब है वो कहता है कि ये इसने खुद ही अग्री किया था कि ये वेव कर देगा इन अगस्त 2023। इसने कहा कि नहीं मुझे ये अपना सम चाहिए, और इसका इन्होंने एक्सपेक्टेशन और डिमांड जो था फरवरी में रखा था, और उन्होंने कहा था जी कि मुझे मेरे जो है 3 मंथ का सैलरी और एथिकल बोनस जो है इस पीरियड के लिए वो मिलना चाहिए। लॉयर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे थे दोनों पार्टीज के वो मिले हैं एम्बापे से भी, और उन्होंने फिर केस जो था रेफर किया था टू LFP's लीगल कमेटी, और फिर लीग ने कहा था कि हम मीडिएट करेंगे, जिसको के रिफ्यूज किया है एम्बापे ने। पाएं इतना पैसा लेके की करोगे जे बच्चे जे हो तुसी, लेकिन फिर भी जनाब ओ माई गाड पैसा देखो यार, सानू मिलियन डॉलर नहीं कोई दे रहा, इतने सिर्फ 60 मिलियन,
1 बिलियन उसके सारे अकाउंट्स मिला के 1 बिलियन हो गए भाई।
भाई व्हाट इज दिस,
और आपसे 1 मिलियन के लिए
है, रो रहे हैं हम लानत है
अपने यूट्यूब।
हाँ
और क्या वो एक्स है,
हाँ
इंस्टा फेसबुक ये सब मिला के उसके 60 मिलियन प्लस तो उसके सिर्फ सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब के।
किसके किसकी बात,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो को
भाईजान, हम एम्बापे की बात कर रहे हैं, क्या हो गया,
छोड़ दे गरीब आदमी है, मैं बात कर रहा हूँ हीरो की, जिसका
हीरो की हमने बता दिया
1 बिलियन। मैं आपके 1 बिलियन और 1 मिलियन पे आ रहा था,
हाँ।
कि एक बंदा 1 बिलियन पर
फॉलोअर्स है उसके, हमको पैसे चाहिए 1 मिलियन
यार, एक एक फॉलोअर्स भी 1-1 डॉलर दे देगा तो आइडिया कैसे,
कैसा आइडिया यार, चलो
1-1 डॉलर ज्यादा देना ही नहीं है, ज्यादा
नहीं
जेब पे भारी नहीं पड़ेगा,
ना 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 ना
एक फॉलोअर्स,
हाँ
1 डॉलर
बस बस योर 1 बिलियन फॉलोअर योर मतलब व्हाट इज दिस.
लेकिन सारे प्लेटफॉर्म को मिला के ना, सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है उसके, एक्स पे भी, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, और
हिस्ट्री क्रिएट की और किसी के नहीं है.
सब मिला के तो किसी के भी 1 बिलियन,
किसी के नहीं है 1 बिलियन फॉलोअर्स, किसी के नहीं.
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं.
हाँ, बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स जो है उनके भी नहीं है.
यहाँ मिलियन कंप्लीट नहीं हो रहा,
मिलियन नहीं पूरा हो रहा यार. मतलब
पे कोई पोस्ट डाल दो तो
चार लोग उससे पांचवा देखता नहीं है यार. व्हाट इज दिस, ये लानत है ऐसी जिंदगी पे.
यकीन करें इस पर कुछ
इस जिंदगी पे लानत है.
ये नहीं, लानत तो जिंदगी पे ना
ना ना जिंदगी पे लानत है भाई.
जिंदगी तो अल्लाह ने अच्छी
मजे भाई क्या कहते हैं मजे भाई तो ऐसा कर देते हैं, कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, लानत ऐसी जिंदगी पे.
नहीं, अल्लाह सबको अच्छी जिंदगी दे. अच्छी जिंदगी भी कोई कम नहीं है, अच्छी जिंदगी है. लेकिन उस जिंदगी को आपने अजीरन बनाया है अपने लिए.
बहुत अजीरन बनाया यार, मिलियन डॉलर नहीं हो रहा, 400 ज्यादा ऊपर की जा रहे. अच्छा यार, यानी पे अगर उसके ऊपर ही कोई 10-12 हजार अगर हिट्स आ जाए तो हम भी कोई 4 पैसे कमा लें. ना जी ना, तौबा करो. कोई मतलब है, कोई प्यार नहीं दिखा रहा हमारे साथ
यार. कुछ गड़बड़ है मुझे.
हाँ, कुछ गड़बड़ है,
साजिश है.
कोई साजिश है, कोई रोक रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं इसको ना हिट करो यार.
ये है कुछ गुड़बुड़ है, गुड़बुड़ है, कुछ चक्कर है,
गुड़बुड़ है.
दिया को बनाना पड़ेगा, दिया.
हाँ,
पता करना पड़ेगा, कुछ चक्कर है, चक्कर है.
क्या चक्कर है यार. यानी तुम देखो सोनू निगम जो है उसके अपने कितने फॉलोअर्स हैं. हम जब तस्वीर डाल रहे हैं तो उसके अपने भी फॉलोअर्स हमको फॉलो.
यहाँ सवाल है,
सवाल है ना.
पर जब आपने मुझे ये कहा ना कि यार सोनू निगम के साथ भी पिक्चर 5 तक नहीं पहुंची.
हाँ देखो ना, जो है वो शबाना आजमी के साथ पहुंची, ना जावेद अख्तर के साथ पहुंची, ना दिया मिर्जा के साथ पहुंची. हाँ. ना पता नहीं और कौन कौन से कितने, अनुभव सिन्हा के साथ थी, ना उनके साथ पहुंची, ना अनु मलक के साथ पहुंची, ना मुकेश जो है वो भट्ट उनके साथ ना पहुंची. मतलब और तो अब मुझे याद ही नहीं है किन किन के बॉलीवुड के सितारों के साथ मेरी तस्वीरें हैं.
4 से ज्यादा व्यूज
ही नहीं है. मतलब व्हाट इज दिस.
अब एक काम करिए, आपको मैं एक बिल्कुल बरादराना, आपको पता छोटे भाइयों की तरह हूँ मैं आपको, और आपको भी अपनी बड़ी बहन ही समझता हूँ मैं. आप एक तस्वीर खिंचवाइएगा मेरे साथ किसी दिन.
उस पे आएंगे 10,000 हिट्स.
आपको अंदाजा हो जाएगा कि
बंदा कितना पॉपुलर है.
वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं
बरसते
नहीं,
और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं.
उनको गरजने की जरूरत.
हाँ यार, मतलब
ऐसा करेंगे हम ऐसे ही टिकटॉक पर भी तस्वीर बना.
यानी आप देखो ये मासूम प्रजा
जो है, मुझे देखने वाले भी बंद हो जाए.
हाँ, ये तुम, ये दिस इज ऑन योर ओन रिस्क.
ये बड़ा बहुत बड़ा रिस्क,
ऑन योर ओन रिस्क. ठीक है,
ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाए.
यानी ये मासूम परिंदा जो है ये उड़ के आईफा अवार्ड्स जो है अटेंड करने चला गया है, फिर भी लानत है हमारी जिंदगी पे. हमारे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा भाई.
नहीं कुछ है, साजिश है ये. ये मुझे लगता है कि कोई दुश्मन मुल्क के साथ है आपके साथ.
बिल्कुल,
कोई कुछ भी ना मिले तो आप दुश्मन मुल्क पे डाल देना. हाँ? आप अपनी काबिलियत को जीरो कर लें.
हाँ?
और उस पर रिजल्ट ना मिले आपको.
नहीं,
उसके बाद यार ये सब काम दुश्मन मुल्क
है. दुश्मन मुल्क ही है
ये भी, दुश्मन मुल्क.
यस,
चलिए जी, कोई बात नहीं. अब आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा इनकी कितना, देखे
पॉपुलरिटी का.
आप सोचे, सबके अपने मसाइल हैं, इनके मसले दूसरे.
हाँ, मेरे और मसले हैं कि मुझे हिट्स नहीं मिल रहे हैं भाई.
आपके मसले क्या होंगे, मेरे मसले क्या होंगे.
किसी की ये मॉर्गेज है मसला, किसी का ये है कि बच्चा नलायक है, किसी का ये है कि मियां नलायक है, किसी को 12 साल का बच्चा नहीं मिल रहा. हमारा ये कि हमको हिट्स नहीं आ रहे हैं यार, इतने बड़े बड़े सितारों के साथ तस्वीरें डाली हैं फिर भी.
अच्छा, इस पे कायमा कमेटी का इजलास
बुलाना पड़ेगा यार.
कि इस पर
कायमा क्या, दायमा, लाइमा, सारियों कमेटियों के इजलास बुलाओ यार.
ये चिंता तो हो गई है,
चिंता हो गई है ना.
4 से ज्यादा 5वां व्यू क्यों नहीं,
क्यों नहीं आ रहा है यार. व्हाट इज दिस है,
कुछ साजिश हो रही है.
साजिश हो रही है, बिल्कुल हो रही है. दुश्मन देश कर रहा है हमारे खिलाफ.
सोचते हैं एक टॉप ऑफ दी आवर का ब्रेक ले लेते हैं, और मैं भी सोचता हूँ. हाँ? आप भी सोचिए, और फिर कॉल खोल लेंगे. आपकी कॉल आप करेंगे ना, 7:30 बजे तक आपके साथ हैं. तो 4166201778 पर आप कॉल करते हैं. और आज इनका ये मसला, मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे ये खुशी खुशी घर जाएं, इस मसले को हल ही कर देते हैं. भाई जब ये तस्वीरें अपनी टिकटॉक पे उधर डालती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ ये डालती हैं, लेकिन 4 व्यूज से ज्यादा इनकी पिक्चर पर नहीं आते. इस मसले को आज हम हल करने की कोशिश करेंगे. बहुत बड़ा मसला है ये, पाकिस्तान की मसाइल से, बिजली के मसाइल से, यहां के टेररिज्म के मसाइल से, और इन्फ्लेशन के मसाइल से. सबसे बड़ा मसला ये है कि व्यूज 4 क्यों आ रहे हैं, 5 इससे आगे बढ़ नहीं रहे. तो ऐसा करते हैं, हम अभी ब्रेक ले लेते हैं टॉप ऑफ द आवर का, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं. हमारा नंबर 4166201778.
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां मारने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मोईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मोईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक क्रू थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक क्रू 519622।